ए नमः नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूं। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक क्रमांक 27। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानदमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दाति स्वपदान्तिकं। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन दिया है उसकी चर्चा हम आज और आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, टू बी मटेरियली इम्पॉवरिश्ड इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी। मटेरियली इम्पॉवरिश्ड इस इन इंग्लिश शब्दों का सीधा अर्थ ऐसे होता है कि जो गरीब है। लेकिन गरीब का अर्थ क्या है? केवल जिसके पास धन नहीं वही गरीब है, जिसके पास जो निर्धन है। तो ये इतनी साफ बात नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि कलयुग में इवन ए बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी को भी अपने पास जो कौड़ी है कुछ पैसे हैं उनका भी अभिमान हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक कथा आती है जिसमें पुराने जमाने में एक पैसा मिलता था, काफी बड़ा था वो भी। तो एक मेंढक को, फ्रॉग, उसको नदी के किनारे एक पैसा दिखता है तो तुरंत जाकर उसके ऊपर वो कूदी मार के बैठ जाता है और बाकी लोग कहते हैं कि चलो चलो तालाब में, चलो अंदर सरोवर में। बोले नहीं, आप लोग जानते नहीं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं आपसे बहुत अधिक धनवान हूं। तो बाकी मेंढक कहते हैं कैसे, देखो मेरे पैर के नीचे क्या है। तो सब देखते हैं कि इसके पैर के नीचे एक पैसा है। तो कोई कहता है कि ये पैसे को, इस पैसे का तेरे लिए क्या उपयोग है, यहाँ तो कोई दुकान है नहीं, हम लोग तो कोई चीज खरीदते नहीं, तो ये पैसा लेके क्या करोगे तुम। वो कहते हैं वो कुछ भी हो, भले ही इस पैसे का मुझे कोई उपयोग ना हो, लेकिन पैसा तो है ना मेरे पास। तो कई लोगों को समझ में नहीं आती ये इसकी बुद्धि, कि जिसका कोई उपयोग नहीं, जो कुछ काम की बात नहीं है, उसको लेकर क्यों कहना कि ये मेरे पास धन है। फिर एक मेंढक कहता है, छोटा सा, वो कहता है कि मैं देखा हूं दूर से हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए आ रहा है। तो सब लोग एकदम झट से तालाब में कूदी मारते हैं और देखते हैं कि ये अभी तक मूर्ख ऐसे ही खड़ा है उधर। तो लोग कहते हैं कि पता है क्या हो रहा है, हाथियों का झुंड आ रहा है, जल्दी चलो। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों निकलूं यहां से, केवल हाथी हो गया तो क्या हो गया। अरे जब मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक पैसा है, तुम्हारे पास है क्या। तो लोग कहते हैं ये कितना मूर्ख है, ये हाथी थोड़ी पूछने वाला है कि तेरे पास क्या है, तू यहां क्यों खड़ा है। हाथी उसके ऊपर पैर रखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे नीचे कोई मेंढक था करके। और वो हाथियों का झुंड आकर पानी पी के जाता है। ये सब देखते हैं कि ये जितना वो पैसा भी फ्लैट है, वैसे ये मेंढक भी उतना ही फ्लैट हो गया है। भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर इस छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं कि कैसे भौतिक जगत में कुछ चीजों को हम धन, मूल्यवान या कुछ वैल्यू, कुछ उसको मूल्य देते हैं हम, और इसका मूल्य अधिकतर किस में होता है, इसी प्रकार के लोगों में होता है। धन का मतलब ये नहीं कि वो केवल आप के आसपास के लोग कहें कि ये बहुत धन है तो आप बोलेंगे हाँ ये धन हो गया। इस कलयुग में हम केवल एक ही प्रकार के लोग देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे इसके पास इतना पैसा आ गया मतलब ये व्यक्ति सुखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज हम रास्ते में, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, घर में एक ही चर्चा होती है लोगों की कि कैसे और अधिक धन जुटाया जा सकता है या कैसे और अधिक धन मिलाया जा सकता है, कैसे यहाँ पर कुछ लेंगे तो कुछ 10% का सेविंग होगा या 5% का सेविंग होगा। 2400 घंटे इसी प्रकार की बातों में फंसे होने पर हमारा माइंड, मन उस प्रकार से कंडीशन हो जाता है। जैसे जिसने पेट भर भोजन किया है कम से कम वो और भोजन की तो लालसा नहीं करता, ये तो सिंपल बात है। अगर जो पेट भर भोजन करके आया हो और उसे कहा जाए कि चलो और कुछ आ गया है, अधिक अच्छे व्यंजन है खाओ, बोला नहीं आज हो गया, क्यों कि ये आइटम अच्छे नहीं है, आपके पसंद के नहीं है, बोला बात वो नहीं है, मेरा पेट भर गया है। श्रीमद् भागवत भक्ति के लिए ये इतना सिंपल उदाहरण देती है। ये ग्रंथ ये इतना सिंपल उदाहरण देता है कि जिसका पेट भर गया हो, तुष्टि पुष्टि क्षुधा पयो अनुघासम, अनुघासम एक के बाद एक हम जब भोजन लेते हैं तो तुष्टि हम संतुष्ट होते हैं, पुष्टि हमें शक्ति मिलती है और क्षुधा पयो हमारी भूख निकल जाती है। तो यहां पर निर्धन शब्द का वास्तविक अर्थ यह है जिसका पेट भर गया है भगवान की भक्ति से, जो व्यक्ति जिसका नरिशमेंट, जो पदार्थों से व्यक्ति का शरीर अच्छा होगा वो उसको भगवान की भक्ति में मिलती, बाकी जो धन है या धन नहीं है वो एक तत्कालिक बात है। तो प्लीज ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि निर्धन का मतलब है केवल जो गरीब है केवल उसी के पास भगवान आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक दृष्टिकोण ऐसा भी है कि जो गरीब है कम से कम वो घमंडी नहीं होना चाहिए, हालांकि आजकल वो दिखते वो भी है क्योंकि वो माइंड थोड़ा सा डिजीज्ड है। मणिग्रीव और नलकुबर, ये कुबेर पुत्रों को उनका जो व्यवहार है कि मदिरा पी रहे हैं, स्वर्गलोक में बाकी वहाँ की जो अप्सराएं हैं या देवांगनाएं हैं उनके साथ एक सरोवर में बैठकर विवाह जाकर विहार कर रहे हैं, उनके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, खुद के वस्त्रों की भी शुद्ध नहीं है, उनको उनके वस्त्र निकल गए और वहाँ से नारद मुनि आ गए तो वो जो अप्सराएं थी वो लज्जा के मारे बाहर निकलकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए और ये कुबेर पुत्र हैं और वो नारद मुनि को देखकर शायद ऐसे कुछ किया होगा, हाय हेलो। तो नारद मुनि सोच रहे हैं क्या क्या है ये कि व्यक्ति को इतना उसकी शर्म लज्जा चली जाती है या उतना घमंड आ जाता है। तो नारद मुनि तुरंत जान लेते हैं कि ये व्यक्ति दो भाई केवल अपने बाप की संपत्ति की ओर देखकर सोच रहे हैं कि हमको कौन कुछ करने वाला है, तो इसलिए उनके ऊपर अपार करुणा करने के विचार से नारद मुनि को कहते हैं कि ठीक है आपको यहां पर बिना वस्त्र के रहना अच्छा लगता है, जाओ ये पृथ्वी पर वृक्ष की योनि में जन्म ले लो। तो कोई कहेगा अरे साधु हैं उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो साधु का क्रोध एक परम वैष्णव का क्रोध ये कोई मामूली क्रोध नहीं हो गया, मामूली क्रोध होता है रजोगुण के प्रभाव से, एकमात्र कारण है रजोगुण बढ़ जाता है तो क्रोध आना ही चाहिए। एक साधु का क्रोध है ये उसकी कृपा दृष्टि है, तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता ये कैसे कृपा दृष्टि है, लेकिन यही मणिग्रीव और नलकुबर वृक्ष की योनि मिले तो कहीं भी वृक्ष हो सकते थे ना, अमेजॉन जंगल है या सह्याद्री जंगल है, लेकिन वो नारद मुनि के कृपा के कारण ब्रजधाम में दो वृक्ष के रूप में जन्म लिए। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि एक साधु क्रोध करता है तो इतनी कृपा देता है, अगर प्रेम से कुछ आशीर्वाद देगा तो क्या होगा। तो नारद मुनि ये नहीं सोच रहे थे कि इनको अभी मैं उपदेश करूं उनको कुछ बताऊं, ये बताने के सीमा के बाहर है, पूरे मदिरा पिए हुए हैं तो उनको क्या, सोमरस पिए हुए हैं तो उनको क्या समझ में आएगा क्या उपदेश क्या है क्या नहीं है। तो नारद मुनि उस समय एक लॉजिक लगाते हैं कि जिसको काटा चुभा है, जैसे हम कभी कभी ट्रेकिंग पे जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति को काटा लगता है बड़ी मुश्किल से वो काटा निकालता है, फिर दूसरा कोई कहता है कि अरे काटा लग गया, तो हम देखा जाता है पहले उस व्यक्ति को थोड़ा उसके प्रति कंसर्न आ जाता है कि अरे दिखाओ दिखाओ क्या हो गया, क्यों, क्योंकि अभी अभी उसको भी लगा था। अगर अपने को कुछ दुख हो गया है और वो दुख दूसरे को होता हुआ देखकर आनंद करना, ये पशु जीवन है। अपना दुख दूसरे में देखकर उसके प्रति दुख प्रकट करना या वेदना उसकी जो है उसमें सम्मिलित होना, ये मनुष्य जीवन है। एक बार एक हेल्थ डॉक्यूमेंट्री दिखा देते टीवी पे, बहुत मेरे बचपन की याद है ये, तो जापान में बच्चों को वैक्सीन दिलाते, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, तो छोटे बच्चे उनको क्या मालूम क्या हो रहा है, तो बच्चों को पहले वो पूरा उनका स्लीव ऊपर करते हैं फिर थोड़ा स्प्रिट लगाते हैं, तो स्प्रिट लगाने से अच्छा लगता है ना, आप देखोगे जिसके भी शरीर पर अगर कुछ ये देना है तो पहले पहले अगर स्प्रिट लगा लेते एकदम ठंडक पहुंचती है तो उसका चेहरा ऐसा होता है ये क्या हो रहा है, और फिर जब एक सुई घुसती अंदर तो वो इतना जोर से उसको चिल्लाने की इच्छा होती है लेकिन कभी कभी वो स्वर भी निकलता नहीं बाहर इतना वो। तो ये सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि पहले किसी बच्चे को अभी भी हंस रहा था अचानक रोने लगा क्या हो गया उसको, फिर उस बच्चे को बाजू में कर दिया, दूसरे को लाया उसको भी ऐसे ऐसे किया तो वो भी देख रहा था क्या हो रहा है तो वो भी रोने लगा। तो जो पहला था वो देख रहा है कि ये केवल मेरे लिए नहीं है इसको भी हो रहा है उसको भी वही हो रहा है उसको भी वही हो रहा है। जब पांचवा बच्चा जब उसके बाजू में आके रोने लगा तो पहला वाला हंसने लगा कि पूरा अपना दुख भूल गया वो, क्या ये जगत का नियम कि मुझे कुछ हो रहा है मेरे जीवन में संकट है तो मैं सोचता हूं सबसे पहले मेरे जीवन में क्यों मेरे जीवन में क्यों, बाकी सब लोग ऐश आराम मौज मजाक कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर रहा। फिर कहते हैं कि बाकी भी दुखी है ये भी दुखी है वो भी दुखी है तो कहते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि मेरे घर में क्लेश है सबके घर में तो ठीक है। तो कुछ ही समय बाद हम वास्तविक दूसरों के दुख के ऊपर अपना सुख का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हम चढ़ाते हैं उसके ऊपर। एक अत्यंत वेदनामय जिसको भजन कह सकते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर अपने हृदय की पीड़ा बता रहे हैं, पर सुख दुखी दूसरों का सुख देकर मुझे बहुत दुख होता है, पर दुख सुखी दूसरे का दुख देकर मुझे सुखी बहुत सुख होता है, हे भगवान कैसे मेरे मन की यह अवस्था हो गई। और वैष्णव आचार्य केवल श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण नहीं, अनादिकाल से जो वैष्णव आचार्य आ रहे हैं उनका एक ही क्वालिफिकेशन है कि दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, यहां तक कि दूसरों का भौतिक दुख भी देखा नहीं जाता। कम्युनिस्ट देश जो थे, आजकल एक दो ही बचे हैं लेकिन जो पहले थे ईस्टर्न यूरोप में खास करके पूर्व यूरोप में 7-8 देश, उनका ऑफिशियल पॉलिसी थी कम्युनिज्म का मतलब है निरीश्वरवाद, हम ईश्वर में भरोसा नहीं रखते। स्कूल में कॉलेज में नास्तिकवाद नाम का एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है, नास्तिकवाद एक स्कूल और कॉलेज का सब्जेक्ट होता है। तो प्रभुपाद को बताया किसी ने कि पूर्व जर्मनी, अभी तो दो जर्मनी एक हो गए हैं लेकिन पहले पूर्व पश्चिम दो देश थे, तो वहां पर दूध नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, फल नहीं मिलते, बारिश नहीं हो रही है कितने वर्षों से। तो प्रभुपाद जी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। तो उन्होंने कहा, जो भक्त वहां पर ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कम से कम उनको कहो कि ये हरे कृष्णा जप से आपको वर्षा ठीक से मिलेगी, बारिश ठीक से होगा, आपको धान्य मिलेगा खाने के लिए, दूध मिलेगा पीने के लिए। मतलब वास्तविक ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है कि आप धन धान्य यह सब ले लो, लेकिन ये आप बिना वजह के आप ये नास्तिकवाद का ये कर रहे हैं तो क्या इसका प्रयोजन है। तो इसलिए निर्धन का सबसे पहला मुख्य अर्थ यहां पर जो प्रभुपाद बताते हैं वो ये, वन हु डज नॉट पजेस एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट सिंपली पजेसेस कृष्णा इज कॉल्ड अकिंचन। हमको निर्धनता मतलब गरीबी से काम नहीं है कि गरीब होने से व्यक्ति भक्त होता है ना, या अमीर होने से व्यक्ति भक्ति अच्छी कर सकता है वो भी नहीं। अब कृष्ण कौन है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, तो जिसके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है वो अकिंचन, लेकिन उसके पास कृष्ण तो है ना। अभी कोई कहेगा मेरे पास मेरे पास कहने बोलने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन जो देश का राजा है वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, कोई कहेगा अरे फिर क्या तकलीफ है, फिर तो राजा जो आप जो कहेंगे वो सब काम करने वाला है। कुछ ये ऐसा ही भाव है इसमें, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि हम सब कुछ त्याग कर दें और भगवान से कहें कि अभी आप मेरे लिए ये लाओ, आप मेरे लिए वो लाओ, बात वो नहीं है। पजेसिंग मेंटालिटी, किसी भी चीज पर अपना स्वामित्व, ये चीज मेरी है, थोड़ी सी ये फिलोसॉफिकल ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा समय लग सकता है कि कैसे व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा जब भी भक्तों के घर में विग्रहों की स्थापना होती है तो कई बार लेक्चर्स में या कई बार भक्त कहते हैं कि आज से हमारे घर में जगन्नाथ जी नहीं आए हैं, आज से हम जगन्नाथ जी के घर में रहना शुरू कर दिया, या राधा कृष्ण के घर में हम रहते हैं। तो बाहर की लोग समझते हैं ये क्या है, ये किसको समझ में नहीं आता। लेकिन वास्तविक भाव ये है कि मेरे घर में मैंने छोटा सा कॉर्नर भगवान को दिया है, ऐसी बात नहीं है, ये उनका घर है और उसमें मैं रहता हूं। इस भौतिक जगत को तो जंगल कहते हैं ना, एक वन। तो पेजावर मठ स्वामी कह रहे थे कि कई बार लोग अपने घर का नाम भवन रखते हैं, शांति भवन, श्रीनिवास भवन, लक्ष्मी भवन। तो भ माने भगवान, भ का अर्थ है उसमें भगवान। आप भगवान को निकाल दो अपने घर से, फिर वापस वो वन बन जाएगा। और वहां पर वन मतलब क्या है, जंगल लाइफ में डॉग ईट डॉग, एक दूसरे को खाने के लिए केवल लोग पशु आतुर होते हैं। तो इंटेलिजेंट डिवोटीज, बुद्धिमान भक्त वन में न रहते हुए भवन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान होते हैं। द वर्ड अकिंचन मीन्स वन हु हैज लॉस्ट ऑल मटेरियल पोजिशंस। एज लॉन्ग एज वी हैव इवन द स्लाइटेस्ट टिंच ऑफ एन आइडिया ऑफ बिकमिंग हैप्पी मटेरियली इन सम वे ऑर अदर, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट ए मटेरियल बॉडी। नेचर इज सो काइंड दैट अकॉर्डिंग टू द वे वी वॉन्ट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, शी विल गिव अस अ सुटेबल बॉडी अंडर द डिरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। बिकॉज द लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ही नोज एवरीथिंग, देयरफॉर नोइंग दैट वी स्टिल वॉन्ट समथिंग मटेरियल, ही विल गिव अस अनदर मटेरियल बॉडी। येस, टेक इट। कृष्णा वॉन्ट्स अस टू हैव अवर फुल एक्सपीरियंस थ्रू विच टू अंडरस्टैंड दैट मटेरियल बाय मटेरियल गेन वी शैल नेवर बी हैप्पी, दैट इज कृष्णाज डिजायर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या आध्यात्मिक बोध का एक घटक है, एक फैक्टर है कि हमको दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए इसके बारे में समस्त मानव समाज में एक मत है। लेकिन किसी को कहा जाएगा कि इस अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो एक भौतिक शरीर का विकास मत करना। बोले अरे फिर सुखी कैसे हो सकते हैं। फिर We don't want material distress, but we want material body. तो ये दो चीजें incompatible है। जैसे हमको अग्नि भी चाहिए और हम उसके ऊपर पानी भी उसी समय डाल रहे हैं तो लकड़ी कैसे जलेगी। क्या भगवान किसी के भौतिक संकट या भौतिक समस्याओं में कभी दखल करते हैं? आज ही प्रातःकाल में एक बहुत ही मिस्टीरियस, उसका नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वयं मिस्टीरियस रखा है कि ये लीला, ये घटना ऐसी हुई। भवानंद राय एक अच्छे भक्त और उनके पांच पुत्र रामानंद राय, गोपीनाथ पट्टनायक, उसमें से गोपीनाथ एक हाईली प्लेस्ड ऑफिसर गवर्नमेंट में, और उनका काम क्या था, एक छोटा सा इलाका उसके ऊपर कलेक्ट टैक्स वगैरह लेना, और मुख्य काम था राजा के लिए घोड़े खरीदना। जैसे आजकल किसी कंपनी में परचेस डिपार्टमेंट होता है ना, तो वैसे वो उस समय का परचेस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। और अच्छे अच्छे घोड़े, जो जैसे आजकल गाड़ियों के लिए जो भाव है, नई गाड़ी, नया मॉडल, तो उस समय गाड़ियां तो थी नहीं लेकिन घोड़े थे। वैसे बात एक ही है, गाड़ियों की पावर भी किसमें गिनते हैं, हॉर्स पावर, है ना। अभी हॉर्स गया लेकिन हॉर्स पावर अभी भी लोगों के मन में दृढ़ है। तो घोड़े उस समय का बहुत ही मूल्यवान एक कमोडिटी था। और इस भौतिक जगत की रीति ऐसी है कि जो भी चीज मूल्यवान हो जाएगी उसमें करप्शन आ जाता है। कोई बता रहा था कि जो मास्क आजकल लोग पहन रहे हैं वो पहले 1.5 रुपए मिलता था, 1.5 रुपए में, 1.50 रुपीज, और कल उसका भाव हो गया है 5 रुपया या 15 रुपए। तो क्यों? अभी जो बना रहा है उसको कहेंगे कि इतने लोग बेचारे कष्ट में हैं, तो आप इसका दाम कम कर दो क्योंकि आपके मार्केट तो एश्योर्ड है आपके लिए। सारा भारत आजकल मास्क खरीदेगा खरीद रहा है। वो बोले नहीं, यही तो समय है पैसा बनाने का, आज नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा। तो कोई चीज जो ज्यादा मूल्यवान होती जा रही है उसका भाव बढ़ाना यह भौतिक रीत है। और देखो बिल्कुल उल्टा, अगर कोई चीज मूल्यवान है तो उसको और अधिक सस्ता करते जाना यह स्पिरिचुअल रीत है कि ये कलयुग है, लोगों को ज्यादा बुद्धि नहीं है, धर्म कर्म जप तप क्रिया किसी में रुचि नहीं है। तो भगवान कहते थे ठीक है, तो अब कलयुग में मुक्ति के साधन में और कड़े कर दूंगा ना, बिल्कुल उसके उल्टा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 गतिदा लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, नाथ परतरोपाय सर्व विदेश दृश्यते। ये हरिनाम हम देखते नहीं कि सतयुग में सब लोग हरिनाम ले रहे हैं, द्वापर में हरिनाम ले रहे हैं, केवल नाम कीर्तन से। तो जो चीज इमरजेंसी में, महाप्रभु इमरजेंसी है कलयुग का, मतलब समय कम है, हमारी आयुर्वेदा कम है, बुद्धि कम है, ऊपर से हम झगड़े करते हैं, इतने डिस्टर्ब है हमेशा, तो कहते ठीक है एकदम सस्ते में ले लो, केवल नाम जप करो। तो गोपीनाथ घोड़ों के इस व्यापार में देखा उन्होंने कि बहुत पैसा है इसमें। तो पैसा क्या, आजकल जैसे हमारे एक मित्र अभी पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए, तो मैंने कहा ये आप लोग बताओ, ये आप लोग करप्शन करते हो, आप लोग मतलब आप लोग नहीं आपके डिपार्टमेंट के लोग, तो आप लोग क्या जाके किसको पूछते हो कि मेरे को 1 लाख दो, 2 लाख दो। बोला आजकल ऐसे होता ही नहीं, कई चीजों के दाम तो पहले से ही फिक्स है। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपको आपके ऑफिस में के टेबल के नीचे पैसा, हम लोग बोलते ना अंडर द टेबल डीलिंग वगैरह, बोला ऐसा कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति, कई कई लोग, कई पॉलिटिशियन तो ऐसे हैं जिनके हाथ साफ है एकदम क्लीन, लेकिन उनकी जो पॉकेट्स हैं वो बहुत गंदे हैं क्योंकि उन्होंने वो गंदा पैसा अपने हाथ से लिया नहीं, वो नहीं कहला यहां डाल दो, तो कोई तीसरा अकाउंट है, कोई और एक ऑफिस है, कोई और एक डिपार्टमेंट है, सब अलग अलग जगह से। तो अपनी प्रतिमा को साफ रखने में बहुत सक्सेसफुल है ये लोग। पहले मैं सोचता था कि वो खुद कहेगा कि इतना दो या उतना दो, आजकल ऐसे होता ही नहीं। तो ये घोड़े के बिजनेस में बहुत पैसा था और व्यापारी से कहा कि कितना मिलेगा, कितना मिलेगा अर्थ मतलब भाव नहीं है, मुझे कितना मिलेगा इसमें। तो कहते हैं कि इसका भाव है 60 रुपया और पेपर पे लिखा होगा 80 रुपया, तो 20 रुपया आपका हो गया। बोला हाँ तो ठीक है। तो ये बात राजपुत्र के कानों में गई कि ये हमारा एक ऑफिसर है, ये ऐसे खोटा काम करता है और डिवोटी है, वो भी उसकी फैमिली पूरी डिवोटी है, भक्त है वो। तो ये राजकुमार गए उनके पास और कहा कि आप लोग किसने कुछ ऐसे चुगली कर दी कि ये ऐसे करता है, तो इंक्वायरी हो गई, होता ना इंक्वायरी कमीशन खुल गया, वैसे ही कुछ हुआ होगा उधर। अब ये राजकुमार, उसको कुछ एक आदत थी कि वो ऐसे ऐसे देख के कुछ बात करता था, बात करते समय उसकी गर्दन ऐसे ऐसे जाती थी। अभी गोपीनाथ अपने आप को बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी और मेरे चारों भाई प्योर डिवोटीज हैं, मेरे पिताजी भी बड़े भक्त हैं, कभी कभी होता है ऐसे अभिमान, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु को भी जानते हैं, तो राजकुमार और उनकी थोड़ी कहा सुनी हो गई कि आप खोटा काम करते हो, करप्ट हो आप लोग। बोला नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूं, मेरे रिकॉर्ड देखो। फिर उसने कहा कि आपके जो घोड़े हैं वो भी खराब है। तो अब ये कभी कभी ऐसे होता है, अगर हमको किसी व्यक्ति के साथ कुछ कहना है तो हम बहुत पर्सनल आ जाते हैं ऑब्जेक्शन में। जिसका जिसने दोष किया है उतना ही उसको बोलना, ये समझदारी का काम है। लेकिन अगर किसी ने अकाउंट्स ठीक से नहीं रखे तो उससे कहना है कि तुम्हारा चेहरा भी कितना खराब है देखो, तो अभी वो अकाउंट्स का चेहरे से क्या संबंध है। लेकिन ऐसे हो जाता है। मेनली कलयुग में लोग अपना क्रोध अनावर हो जाता है। तो उससे कहा तुम्हारे घोड़े भी एकदम थर्ड क्लास है। तो गोपीचंद ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे घोड़े कम से कम ऐसा ऐसा तो नहीं करते ना।
अरे बाप रे,
ये पर्सनल इंसल्ट हो गया अभी। और राजकुमार चिढ़ गया, मतलब ये क्या समस्या है आपने आपको। तो उस जमाने में एक पनिशमेंट था चांगा। चांगा का अर्थ होता है एक बड़ा चक्र ऐसे होता था, उस कैदी को बंदी को उसको बांध के रखते थे ऐसे, और वो चक्र ऐसे घूमते 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 ऊपर जाकर फिर उसको वहां से फेंका जाता था नीचे, और नीचे ऐसे तलवार ऐसी खड़ी रखी जाती थी। तो नीचे आके वो तलवार सारे शरीर में या तलवार घुसकर उधर उसकी मृत्यु होती थी। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी तो उनके लिए विरह का भाव, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को सबसे उत्कट हाई पॉइंट लगा। क्यों? क्योंकि ये जगन्नाथ जी हैं, इनका ये रूप हो गया ऐसे, हाथ अंदर आ गए हैं, आंखें बुढ़ी बुढ़ी हो गई है। ये कब हो गई ऐसे? जो अनेक कथाएं जगन्नाथ जी के आविर्भाव के बारे में, तो एक कथा ऐसी है कि ये कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी ये द्वारका में हैं, और कृष्ण वृंदावन की अपनी लीला का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि रोहिणी देवी बता रही है कि कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने वैसे किया। तो वृंदावन का स्मरण भगवान को ऐसे बना देता है। तो जो जगन्नाथपुरी में भगवान विराजमान है, दिस इज बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस सेपरेशन। और महाप्रभु का भाव यही है, सेपरेशन का स्वाद करना, विरह की भावना का स्वाद लेना। तो इसलिए महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहना पसंद करते थे। वहीं पर उनका रोज क्रिया थी जगन्नाथ जी का दर्शन लेना। हरिदास ठाकुर और कभी रूप गोस्वामी आए तो, कभी सनातन गोस्वामी आए तो उनके साथ वार्तालाप करना। चतुर्मास के समय सारे बंगाल के भक्त वहाँ आते थे। रथ यात्रा के शुरुआत से 4 महीनों तक उधर रहते थे, फिर महाप्रभु उनको विदाई करते थे, फिर महाप्रभु और वहाँ रहते थे। तो महाप्रभु किसी ने आके बताया कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? ये गोपीनाथ को आरोप लगाया गया कि वो करप्शन करते हैं, फिर ये हो गया वो हो गया। तो महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूं, अब मुझे इसमें क्यों उलझा रहे हैं इसमें। तो जैसे रनिंग कमेंट्री, वो उनको बांधा गया। अभी महाप्रभु बोला मैं कुछ नहीं करने वाला, अभी वो चंगा चालू किया है, अभी भी मैं कुछ करने वाला नहीं, अभी वो ऊपर जा रहा है वो। तो महाप्रभु कह रहे मुझे क्यों बता रहे हैं सब। उनको मन में क्रोध आया था। और वास्तविक कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि राजा की नौकरी करना और वहां राजा का पैसे का अपव्यय करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। करप्शन मतलब जो अपनी सैलरी है उससे अधिक अगर कुछ इनकम हो रहा है तो उसको लेकर उसका विनियोग इंद्रिय भोग के लिए करना, यह बड़ा पाप है। और तो कहते हैं कि इससे व्यक्ति दोनों जगत में असंतुष्ट रहता है, इस जगत में भी होता है और अगले जीवन में भी उसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। मेरी दादी बताती थी कि एक जमाने में हम लोग एक बोरिवली ईस्ट में पहले रहते थे, तो वहां पर एक रेलवे के क्लर्क थे। उस समय रेलवे में भाड़ा था 2 रुपये 40 पैसे, बोरिवली से दादर 3 रुपया 20 पैसा, मतलब 1.80, 1.90 ऐसा भी होता था। आजकल ऐसा नहीं है कि 5 फिर 10 फिर 15। वैसे आजकल 10 पैसे का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हो तो चला गया सर्कुलेशन से। तो ये महाशय, किसी ने अगर 2 टिकट लिए और 2 टिकट का हो गया 2 रुपया 90 पैसा, तो उसने 3 रुपया दिया तो कहते कि 10 पैसे छोटे नहीं है। तो आदमी कहता अभी ट्रेन आ रही है, अभी छोड़ दो, चलो क्या है। तो इसका 10 पैसा बच गया, तो 10 पैसा लिख देने के बाजू में 10, किसी का 5, किसी का 15, किसी का 5। तो ऐसे करते करते उनका दिन में जो उनको 7-8 बार चाय लगती थी या कुछ पान वान खाते थे, तो वो खर्चा इसमें से निकालते थे वो। फिर रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद उनको ऐसी एक बीमारी हो गई और उतना पैसा जा रहा है डॉक्टरों के एलोपैथी ड्रग्स में सब में, और उनके मन में एक ही विचार, ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा लिया ना, अब मैं उसको इंटरेस्ट के साथ वापस दे रहा हूँ। तो उनके घर वाले कहते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने तो कभी 10 पैसा लिया है, 5 पैसा लिया है, वो तो थोड़ी चोरी होती है, कभी कभी मुसीबत कभी कभी मजबूरी होती है नहीं पैसा अपने पास। ये व्यक्ति का माइंड, उसका मन मानने के लिए तैयार ही नहीं। बोला नहीं, मुझे अंदर से कोई बोल रहा है कि ये तेरे करप्शन का ही फल है ये। तो देखो वो कोई फिलोसोफर नहीं था, लेकिन उसको केवल पता चला ये कि ये मेरे ही काम का फल मिल रहा है मुझे। तो महाप्रभु कहते हैं कि क्यों इसको ये करप्शन करने की जरूरी है, क्या पगार कम पड़ता है उसको, सैलरी कम पड़ती है। अब प्रताप रुद्र महाराज को पता ही नहीं कि ये ऐसे हो रहा है, उनके राजकुमार ने आदेश दे दिया, उनको पता ही नहीं। प्रताप रुद्र महाराज रोज एक काम जरूर करते थे, वो क्या था, काशी मिश्रा जो कि इंचार्ज थे जगन्नाथ मंदिर के, उनके चरणों का संवाहन। जस्ट इमेजिन, राजा होके डेली बेसिस पर ये जगन्नाथ जी के इतने निकट के सेवक हैं, तो उनके चरणों का मसाज करने आते थे वो। आई वॉज वेरी सरप्राइज, राजा प्रताप रुद्र एवरी डे ही वुड कम एंड डू दैट मसाजिंग। अब काशी मिश्रा को लगा कि इनको बताना चाहिए, लेकिन जब काशी मिश्रा ने सुना कि जब डिवोटीज ने महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आपका भक्त है और वो अभी आज काल की दाढ़ में जा रहा है, वो आज मरने वाला है, तो महाप्रभु ने अल्टीमेटम दे दिया कि इसके बाद किसी ने अगर गोपीनाथ का विषय निकाला तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर आलानाथ जाऊंगा, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। तो लोग बोले बाप रे अभी क्या किया था, एक महाप्रभु ही बचा सकते हैं। तो काशी मिश्रा ने थोड़ा सा हिंट दे दी, थोड़ी सी, कि ऐसे ऐसे हो गया है और मैंने सुना है कि अभी वो चांगा पे चढ़ाया है उसको और अभी कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु होगी। तो प्रताप रुद्र ने कहा ऐसा मुझे पता नहीं, अरे मैं तो अभी उसको रोक सकता हूं। बोले नहीं, अगर आप रोकोगे ना तो लोगों को लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना कुछ कॉन्टैक्ट लगाकर, जैक लगाकर आपसे ये काम करवाया है और उनको ये बिल्कुल बात पसंद नहीं है। तो उसने कहा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बलबूते पर कहूंगा। तो राजा तुरंत जाकर वहां पर राजकुमार से कहते हैं कि इनको फांसी मत चढ़ाना, इनको ये मृत्युदंड मत देना। तो राजकुमार भी, अभी राजकुमार थोड़ी उनके मन में ये सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट होता है, एक दिन में कई लोगों को फांसी में चढ़ाते हैं, कई लोगों को मृत्यु देते हैं, कुछ राजा के लिए ये छोटी मोटी चीजें होती है। तो उसने कहा उसने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया इसलिए मैंने उसको ऐसे बोला है, वैसे मुझे भी उसको मारने की इच्छा नहीं थी, वो केपेबल ऑफिसर है, थोड़ा पैसा खाता है जरूर, लेकिन काम का आदमी है लेकिन खाता ज्यादा है थोड़ा थोड़ा। तो राजा ने क्या किया, गोपीनाथ को बुला लिया, क्या बात है सैलरी कम पड़ती है क्या। अब वो बहुत शर्मिंदा हो चुके थे, वो इतने शर्म के मारे चूर पूरे, बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं नहीं मैं आपको वो जो जगह पे आप काम करते थे ना, मैं पूरे इलाके का आपको मैं कलेक्टर बना देता हूं, और सैलरी कम पड़ती है ठीक है, अगले महीने से सैलरी डबल। और राजा एक सिल्क का वस्त्र, एक रेशम पट्ट उनके कंधे पे डालते हैं, चादर, किसी को भी पुराने जमाने में ऐसे चादर देना मतलब सम्मान करना उसका, बोलते जावा। फिर प्रताप रुद्र महाराज के कुछ सेवा का मौका मिला, आज मुझे चैतन्य महाप्रभु का कुछ आज्ञा पालन का मौका मिला, तो वो आनंद से जाते हैं काशी मिश्रा के पास और कहते हैं कि आज मैंने काम कर दिया, वो उसको मैंने मृत्यु से भी बचाया, उसको मैंने डबल सैलरी भी दे दिया, उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया, सब ठीक हो गया अभी। तो है कि अरे रे आपने बड़ा काम ये खराब किया आपने, महाप्रभु का नाम क्यों लिया? बोला ना 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 उनका नाम नहीं लिया मैंने। मैंने कहा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। तब चित्रे महाप्रभु को बताने गए काशी मिश्रा के, महाप्रभु ठीक हो गया, वो अभी मृत्यु से बच गया कम से कम। तो महाप्रभु ने कहा अरे आपने क्या किया ये, मैं एक सन्यासी हूं, मेरा ये नाम ऐसे मंडी डिलीज में क्यों डाला आपने? बोला नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो गया है। तब चैतन्य महाप्रभु सारे परिवार को बुलाते हैं, तब भवानंद राय, गोपीनाथ पटनायक, रामानंद राय सब आते हैं। उस समय महाप्रभु उनको बताते हैं कि आप मेरे नित्य भक्त हो और ये जो आपको ये मन में भौतिक ऑपुलेंस की जो इच्छा थी ना, इसके बारे में क्या कहना है आपको? तब गोपीनाथ एकदम लज्जित होकर कहते हैं कि नहीं 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 ये मेरी गलती थी, मैं आज से सब कुछ त्याग दूंगा, नहीं चाहिए मुझे वो नौकरी चाहिए, वो डबल सैलरी चाहिए, मैं गवर्नरशिप नहीं चाहिए, मैं सब छोड़ दूंगा। तब महाप्रभु कहते कि ये मेरे मन की धारणा नहीं थी, आप लोग अगर सब कुछ अपना व्यवहार छोड़ दोगे तो ये संसार चलेगा नहीं। I want you to be there working. मेरी इच्छा है कि आप यहां काम करो, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए आपका, साफ काम होना चाहिए एकदम। तो ये है निर्धनता, कि भगवान की सेवा के लिए कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी पोस्ट, कोई भी सेवा लेना, लेकिन उससे जो बेनिफिट्स आते हैं उसमें से केवल अपने लिए जितना चाहिए उतना लेना, नहीं तो वी कैन बी इम्प्लीकेटेड, नहीं तो हम उसमें बॉन्डेज, उस बंधन में फंस जाएंगे। तब ये एक छोटी सी घटना में, ये कोई बहुत बड़ी लीला ऐसे नहीं है, लेकिन कृष्णदास कवराज उस समय को लगा कि इतनी सिग्निफिकेंट है कि इसको सीसी में चरण चरण में डालना चाहिए उसको, कि वास्तविक महाप्रभु एक आइडियल सन्यासी के रूप में दिखाई दी, कि उन्होंने कुछ किसी भौतिक व्यवहार में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। तो ये बात ऐसी है कि कृष्णा डजंट इंटरफेयर इन योर लाइफ अनलेस यू अलाउ हिम। हम कहते हैं कि भगवान आपने ये क्या किया, ये क्या किया, भगवान कहते हैं कि मैं थोड़ी इसमें इन्वॉल्व हूं, आपको आपके पुराने किए हुए एक्शन के रिएक्शन मिल रहे हैं, उसमें मैं क्या करूं? अगर आपको मेरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो आपको अकिंचन होना चाहिए। नमो अकिंचन वित्ताय, वित्त का अर्थ है वेल्थ। भगवान ऐसे व्यक्तियों का धन है जो केवल भगवान ही चाहते हैं। और एक उसी परपोर्ट पे प्रभुपाद कहते हैं हाउ डू वी डू इट। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं चाहता हूं लेकिन इतना पैसा हैंडल करता हूं या इतनी मेरे में पावर इतनी हो गई है कि डरता हूं कभी कभी कि इस पावर का मैं गलत इस्तेमाल ना करूं, तो उसके लिए श्री प्रभुपाद का सिंपल फॉर्मूला यह है, ऑलवेज थिंक वन सेल्फ टू बी इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। रोज दैनंदिन बेसिस पर डेली हमको ये अपने आप को समझाना चाहिए, आई एम ए इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जैसे जो पुजारी मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले उनको मानस पूजा करनी पड़ती है, तो मानस पूजा का सबसे पहला वो शुरू होता है आई एम ए इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आमी कृष्ण नित्य कृष्ण दास। ये जो नित्य दासत्व का अगर हमने अपने आप को बता दिया बार 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 बार, तो फिर हम इस अकिंचन वित्त की अवस्था में काम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की।